Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shraddha se swikriti hai, aastikta shraddha janne hai, aur naastikta bhi shraddha janne hai. आपने माना वो नहीं है, ये श्रद्धाजन्य है। देखा है क्या, जो प्रत्यक्ष चीज होती है उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ती। आप वेदांत का श्रवण करते हैं, अभाव भी प्रत्यक्ष होता है, अभाव भी प्रत्यक्ष का विषय होता है। जैसे मेरा यहां होना है, यह आपके प्रत्यक्ष में है, मेरा होना मेरा अस्तित्व आपके दृष्टि का विषय है। और मैं कल नहीं रहूंगा, अभी स्वाध्याय में मैं नहीं रहूंगा, वो मेरा नहीं होना होगा, और वो मेरा नहीं होना आपकी दृष्टि का विषय होगा। आप कह सकेंगे हम अपने आंखों से देख रहे हैं, स्वामी जी नहीं है। आप अपने आंखों से देखेंगे वो वस्तु नहीं है, इसलिए होना भी दृष्टि का विषय होता है और नहीं होना भी दृष्टि का विषय होता है। और जो दृष्टि का विषय होता है वो श्रद्धाजन्य नहीं होता है, वो दृष्टिजन्य है, वो इंद्रिय जन्य है, वो प्रत्यक्ष है, वो आपका अंधविश्वास नहीं है। जैसे आप परमात्मा को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय है और वो आस्तिकता नहीं है, ध्यान देना। जब परमात्मा का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, यदि वो प्रत्यक्ष है तो आस्तिकता नहीं, वो अनुभूति है। आस्तिकता का अर्थ होता है अस्ति इति, केवल परोक्ष ज्ञान, वो परमात्मा है, वो श्रद्धा से आप मान रहे हैं, वो परमात्मा है। शास्त्र से सुना, संतों से सुना और आपको विश्वास हो गया वो परमात्मा है, इतना ही अर्थ है आस्तिकता का। और नास्तिक का भी ऐसे ही है, जिसने माना है नहीं है। देखा है क्या, परमात्मा का नहीं होना नास्तिक व्यक्ति ने कभी अनुभव किया है क्या? परमात्मा का नहीं होना ये आपका प्रामाणिक अनुभव नहीं हो सकता है। परमात्मा यहां नहीं है तो वहां हो सकता है, आपने यहां देखा वो परमात्मा नहीं है तो हो सकता है कि भाई वृंदावन में हो, और वृंदावन में नहीं है तो हो सकता है कि वो और कहीं हो, यहां न हो तो वहां हो सकता है। आप प्रामाणिक रूप से कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? इसलिए श्रद्धाजन्य, जो बोलते नहीं है वो श्रद्धाजन्य है, और जो है कहते हैं ना वो भी श्रद्धाजन्य है। लेकिन एक तीसरी भी चीज है, और नारायण वो चीज है जिज्ञासा। वो तीसरी चीज है जिज्ञासु होना। आस्तिक होने की नास्तिक होने की अपेक्षा आस्तिक होना श्रेष्ठ है, और आस्तिक होने की अपेक्षा जिज्ञासु होना श्रेष्ठ है। आस्तिक का कोई प्रश्न नहीं होता है और नास्तिक का भी कोई प्रश्न नहीं होता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपका ब्रह्म सूत्र कहता है, ब्रह्म जिज्ञासा की बात करता है। ये ब्रह्म जिज्ञासा आस्तिक की नहीं है और ये नास्तिक की भी नहीं है। ये जो जिज्ञासा है ना, ये जिज्ञासु की चीज है, और ये आस्तिकता से ऊपर होना है। जिज्ञासु होना आस्तिकता से भी श्रेष्ठ होना है। आस्तिक हैं ठीक है, नास्तिक होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन आस्तिकता हमारे जीवन में जिज्ञासा बने, आस्तिकता हमें जिज्ञासा में ले जाए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान ने गीता जी में कहा बहुत सुंदर बात, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। सबसे पहला उपाय भगवान ने कहा कि ज्ञान को पाना है तो सबसे पहला उपाय क्या है? भगवान ने कहा प्रणिपात, और प्रणिपात गुरु के पास जाए बिना संभव नहीं है, इसलिए आप बीच में समझ लीजिए। आप दूर से ही प्रणाम करेंगे क्या? इसलिए श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत, आपको ज्ञान पाना है तो गुरु के पास जाए, इसलिए वह समझ लेना चाहिए, बीच में समझना चाहिए। आपको ज्ञान को पाना है तो गुरु के समीप जाना चाहिए और वहां जाने के बाद फिर प्रणाम करना चाहिए। ये उपाय बता रहे भगवान, हमको उपाय ज्ञान को पाने का उपाय बता रहे हैं। और प्रणिपात करने के बाद वहां परिप्रश्न लिखा है, गीता के मूल श्लोक में प्रणाम के बाद परिप्रश्न लिखा है, लेकिन प्रणाम के बाद परिप्रश्न नहीं है, प्रणाम के बाद क्रम आता है सेवा का, और सेवा के बाद फिर परिप्रश्न, क्योंकि बिना मूल्य चुकाए आप प्रश्न पूछेंगे भी तो उसका उत्तर आपके लिए उतना मूल्यवान नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप पहले मूल्य चुकाओ, प्रश्न का मूल्य चुकाओ, उत्तर पाने का मूल्य चुकाओ, ये सेवा, ये उत्तर पाने का मूल्य चुकाना है। और बिना मूल्य चुकाए आपको कोई चीज मिल भी जाए तो वो कितनी मूल्यवान होगी। बिना मूल्य चुकाए आपको फुकट की कोई चीज मिल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, वस्तुतः वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, अपितु जिस मूल्य को चुका के आप वस्तु को प्राप्त करते हैं उस मूल्य का मूल्य होता है। आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं, यहां प्रेमपुरी ट्रस्ट की तरफ से आपको कोई एक पुस्तक मिली, बड़ी कीमती पुस्तक, और वो बिल्कुल फुकट मिली, तो आप उस पुस्तक को घर तक ले जाओगे कि नहीं? मुश्किल है, फुकट मिली है। रास्ते में कोई आदमी बोले कि भैया हमको दोगे, तो आप दे भी दोगे, सोचोगे कल हम मिल लेंगे, हम दूसरी ले लेंगे, लेकिन वही पुस्तक आपने 1100 रुपए देके, 11000 रुपए देके ली हो तो अब वो पुस्तक आपके घर पहुंचेगी, आप उसको संभाल के रखोगे, कोई मांगे तो आप दोगे भी नहीं, ये मूल्यवान होगी, वो पुस्तक मूल्यवान होगी। आप गहराई से सोचो वो पुस्तक मूल्यवान क्यों हुई, आपके लिए पुस्तक का मूल्य है कि जो मूल्य चुका के आपने पुस्तक लिए उस मूल्य का मूल्य है? पुस्तक का मूल्य नहीं है, क्या मूल्य पुस्तक का, क्या मूल्य? आपको तो फुकट में लिए हैं, लेकिन 1100 रुपए दे के लिया है, अब वो पुस्तक आपके लिए बहुत मूल्यवान हो गई, क्योंकि 1100 रुपए मूल्यवान है, मूल्य चुकाया है, इसलिए वो वस्तु मूल्यवान हो गई। इसलिए वस्तु मूल्यवान होने से मूल्यवान नहीं होती है, उसका मूल्य चुकाने से वस्तु मूल्यवान होती है। ज्ञान मिला बिना मूल्य चुका है, उस ज्ञान का क्या मूल्य है? इसलिए हम एक कान से सुन लेते हैं, दूसरे कान से निकाल भी लेते हैं। एक बड़ी मजेदार बात, इंदौर में मैंने शिविर किया, बच्चों का शिविर किया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, 2-3 दिन के बाद बच्चे आना छोड़ दिए, पहले दिन आए, दूसरे दिन, तीसरे दिन छोड़ दिए बच्चे, मैंने सोचा बात क्या है। फिर जब दोबारा मैंने शिविर लिया तो मैंने कहा भैया जो भी बच्चा है उसे 50 रुपए लो, कम से कम 50 लेने का, खर्चा तो बहुत हुआ अपने लोगों का, उधर 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हुआ, बहुत बड़ा शिविर था, लेकिन लिया 50 रुपए। तो अपने लोगों ने कहा कि महाराज आप 50 रुपए क्यों ले रहे हैं? हमने कहा कि 50 रुपए लेंगे तो बच्चे जरूर आएंगे, और हुआ ऐसा, आप बच्चों को लगता था तो हमने 50 रुपए दिए, पहले दिन आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, 5 दिन का शिविर था, पूरे समय तक आए, और पूरे समय तक केवल बच्चे ही नहीं आए और भी अपने साथियों को भी ले आते रहे, 50 रुपए दिए था ना उन्होंने, अब उनको मालूम था अपने को 50 रुपए का, 50 रुपए निकालने सीखना है। तो नारायण ने मूल्य चुका लिया, अब आपके ज्ञान का मूल्य होगा। और ये शास्त्र, इसीलिए शास्त्र आपको कहता है गुरु की सेवा करो, हर जगह पर सेवा सेवा, ये मूल्य चुकाने की भावना है। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले प्रणिपात, और प्रणिपात के बाद सेवा, और सेवा के बाद परिप्रश्न। अब पूछ सकते हैं, सेवा के बाद अब आपको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया है, अब आपका प्रश्न मूल्यवान भी हो गया है, और अब गुरु आपको ज्ञान देंगे तो ज्ञान आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा, क्योंकि आपने सेवा की है, आपने मूल्य चुकाया है। और बात भी सही है, पुराने जमाने में गुरु को खोजने के लिए निकल पड़ता था आदमी, अभी गुरु खोज के पहले गुरु शिष्य को खोजता था, निकल पड़ता था, कहां मिलेंगे गुरु, कहां मिलेंगे, और अभी गुरु शिष्य को खोज के निकल पड़ा। और इसीलिए नारायण गुरु का मूल्य है कि शिष्य का मूल्य है इस समय। और इसीलिए गुरु और ज्ञान अपना मूल्य खोता जा रहा है, क्योंकि शिष्य के अंदर खोज नहीं है, शिष्य के अंदर खोज नहीं है। यदि खोज होगी तो गुरु मूल्यवान होगा, वो ज्ञान भी मूल्यवान होगा। इसलिए कहते हैं भगवान कि अब सेवा के बाद परिप्रश्न आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और उसके बाद तुरंत भगवान बोलते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेन अधिगच्छति। आपको ज्ञान देंगे गुरु उसके बाद, और फिर ज्ञान होने के बाद बोले परम शांति मोक्ष को, और अचिरेनादि माने बिल्कुल तत्क्षण, क्योंकि मूल्य चुका के अंतकरण शुद्ध हो गया। सेवा हमारे अंतकरण को शुद्ध करती है, सेवा हमारे मन को विनम्रता में ले जाती है, सेवा हमारे मन को निस्वार्थता में ले जाती है, सेवा हमें त्याग और वैराग्य में ले जाती है। ये सेवा आप करोगे तो आपका मन त्याग में जाएगा। वहां सेवा का अर्थ है तन से, मन से, धन से आपका मन वैराग्य में जाएगा, आपका मन तत्व को पाने योग्य बनेगा। तन मनसा मनुते, मनसा एव इदम आप्तव्यम, परमात्मा को मन के द्वारा ही पाया जाता है। लेकिन कैसे मन, आपका मन विशुद्ध हो गया है सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, जप ध्यान के द्वारा, स्वधर्म के आचरण के द्वारा अब वो शुद्ध हो गया। अब आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान के द्वारा आपको शांति मिल सकती है। यहां ये जो बात परिप्रश्न की बात है ना, जिज्ञासु की बात है। आज बालक नचिकेता के जीवन में केवल आस्तिकता नहीं, आस्तिकता होती तो संतुष्ट होते, आस्तिकता होती तो नमन कर लेते ईश्वर के, परमात्मा के, आत्मा के अस्तित्व पर संतुष्ट होते और नमन करके बोलते बहुत अच्छी बात, अब हम चल रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी पिता के पास जाए, ऐसा ही होता। यदि केवल आस्तिक होते तो इनका तीसरा प्रश्न ही नहीं बनता, कुछ और ही मांग लेते और आचार्य यम को नमन कर वो चलता बनते। रामकृष्ण परमहंस के पास हजारों लोग आते थे, हजारों लोग आस्तिकता के भाव से भरे हुए आते थे और नमन करते चले जाते, भगवान के बारे में संतुष्ट थे, भगवती के अस्तित्व से संतुष्ट थे। किसी ने भी रामकृष्ण परमहंस को यह नहीं पूछा कि जिसका आप अनुभव करते हैं वो है भी कि नहीं, आप जिस ईश्वर की बात करते हैं वो है भी कि नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया। सब आस्तिक थे, होने पर सबका भरोसा था। लेकिन एक व्यक्ति आया जो न आस्तिक था और न जो नास्तिक, स्वामी विवेकानंद जी आए, नरेंद्र नाम था उनका, और उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं ईश्वर हैं, क्या उसको आपने देखा है, क्या उसका होना आपके अनुभूति का, दृष्टि का विषय है, या आप केवल मान रहे हैं? ईश्वर का अस्तित्व क्या आपके लिए केवल श्रद्धाजन्य है कि दृष्टि का विषय है? और वो प्रश्न के ऊपर का नहीं था, वो केवल ऊपर ऊपर मान लो कोई पूछ भी दे ऐसा भी नहीं था, वो अंदर का था, उनके अंतःकरण की वेदना थी। आज विवेकानंद जी के मन में भाव उठने लगे, वेदना अंदर की संवेदना वेदना में बदल गई, वो सोचने लगे वो है क्या, उसको अनुभव में हम कर सकते हैं क्या, उसको दृष्टि का विषय बनाया जा सकता है, यदि है तो हम उसको दृष्टि का विषय क्यों ना बना ले। और वही वेदना और वो प्रश्न, वो जाके पूछते कि वो है तो आपने देखा है क्या, बोले हां देखा है, तो क्या दिखा सकते हो, क्या आप दिखा। आज तक रामकृष्ण परमहंस के पास किसी ने भी नहीं कहा था कि आप उस परमात्मा को दिखा सकते हो, आज तक किसी में भी हिम्मत नहीं थी ये पूछने की कि आपने उसको देखा है, ये केवल सुना है। आज एक ऐसा व्यक्ति आया जो आस्तिकता और नास्तिकता से भी परे, बिल्कुल जिज्ञासु, ये जो यही जिज्ञासा है, यही जिज्ञासु है। और जो जिज्ञासु है ना, एक वैज्ञानिक दृष्टि वाला होता है। जिज्ञासु माने एक वैज्ञानिक व्यक्ति जो खोज के उसको पाना चाहता है। और सत्य तो यही है, जो वास्तविक वैज्ञानिक होता है वो ईश्वर के अस्तित्व को कभी नकारता नहीं है। विवेकानंद जी ने नकारा नहीं है किसी, आप वैज्ञानिक को पूछना परमात्मा है कि नहीं, वो है नहीं बोलेगा, और न यह भी नहीं बोलेगा कि नहीं है, वो बोलेगा हो सकता है। और हो सकता है इसमें दोनों बातें हैं, नहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। बिना खोजम कैसे कहे को है, या बिना खोजम कैसे कहे नहीं है। इसलिए एक वैज्ञानिक व्यक्ति का उद्गार ये होगा कि परमात्मा हो सकता है। आज विवेकानंद जी महाराज भी यही कह रहे हैं, आपकी जीवन का अनुभव क्या है, वो है कि नहीं। और बालक नचिकेता भी नारायण यही प्रश्न कर रहे, आस्तिक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। अब नास्तिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, बालक नचिकेता का यह प्रश्न जिज्ञासा का प्रश्न, जिज्ञासु का प्रश्न है। और उन्हें बिल्कुल वैसी ही बात बोली है, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वो परमात्मा है तो आप मुझे दिखा दीजिए, वो आत्मा है तो मुझे साक्षात्कार करा दीजिए, ये नहीं बोला है उन्होंने। उसको संदेह व्यक्त करते हुए, और इसलिए तो जिज्ञासु है, आप निश्चयात्मक बोल रहे हैं तो आप जिज्ञासु नहीं है, आप निश्चयात्मक बोल रहे हैं तो आप जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु का अर्थ है जानना चाहने वाला, और जानना चाहना जो है हमेशा वहां संदेहपूर्वक होता है। आप जानना चाहते हैं, आपके मन में भाव है, वो है भी कि नहीं, आप देखना चाह रहे हैं, और देखना चाह उसके पहले आपके मन में जिज्ञासा होती कि है भी कि नहीं, और है तो कैसा है। इसलिए इन्होंने निश्चयपूर्वक नहीं बोला है, उन्होंने संदेहपूर्वक बोला है। ये प्रश्न जो भी होता है संदेहपूर्वक होता है, और संदेहपूर्वक बोला, दोनों कोटियां रखी, संदेह में दो कोटियां होती है, नवा है कि नहीं, ये नवा, ये कोटि, संदेह की कोटि। और इन्होंने बिल्कुल वही कि वैसे बात पूछी, एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, कुछ लोग कहते वो है अस्ति इति एके आस्ति कहा। जो आस्तिक लोग हैं वो बोलते हैं कि वो परमात्मा है, और कुछ लोग बोलते हैं वो परमात्मा नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो परमात्मा है कि नहीं, आप ध्यान देना, बहुत गहरी बात, बहुत गहरा प्रश्न किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है, ये मेरा मत नहीं है, कुछ लोगों का मत, दूसरे का मत है, दूसरे के मत से मैं कह रहा हूं। वो कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है, माने मैं उसके केवल होने में संतुष्ट नहीं हूं, मैं नहीं मानता वो है। कुछ लोग कहते हैं कि वो है, लेकिन मैं नहीं मानता वो है, आप ध्यान देना। कुछ लोग कहते हैं वो नहीं है, लेकिन मैं यह भी नहीं मानता कि वो नहीं है। आज नचिकेता कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है, ये मैं नहीं मानता, और कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं है, ये भी मैं नहीं मानता, वो है यह भी मैं नहीं मानता हूं, और वो नहीं है यह भी मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि बिना खोजे बिना शोधे उसको कैसे कहा जाए कि वो है, और कैसे कहे बिना खोजे बिना शोधे कि वो नहीं है, ये दोनों अंधविश्वास हैं। अब मैं जानना चाहता हूं उस तत्व को, मैं जानना चाहता हूं जीवन में करके, पुरुषार्थ करके, बिना की नहीं। आप बताओ मार्ग क्या है, यहां पर मार्ग पूछ रहे हैं बालक नचिकेता, उसका मार्ग पूछ रहे हैं, आत्मानुभूति का मार्ग पूछ रहे हैं। एतत् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम् वराना मेष वरस्त्रतियः। एतत् विद्याम, अब ध्यान देना, ये कह रहे हैं कि मैं जानूं कि वो है अथवा नहीं है। अब यहां यदि नहीं है तब भी संतुष्ट है, ठीक है, हमको जानना है वो नहीं है, फिर हम दूसरा उपाय देखेंगे क्या है। फिर आपके द्वारा विद्याम अनुशिष्टः त्वया हम, अब यहां शिष्यत्व की स्वीकृति है। आपके जितने भी शास्त्र है ना, ये आपके तभी प्रकट होते हैं जब शिष्य अपने शिष्यत्व को स्वीकार करता है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं उसके सबसे पहले शरणागति, आप गीता में देखना, वहां शरणापन्न हुआ अर्जुन, शरणापन्न हुआ शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने ज्ञानोपदेश नहीं किया, वर्षों तक साथ रहे, मित्रता के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में, बहुत गहरा प्रेम था अर्जुन और भगवान के बीच, लेकिन भगवान ने कभी भी अपने तरफ से अर्जुन को ज्ञानोपदेश नहीं किया। आप महाभारत देखना उठा के, वहां के एक श्लोक में भी भगवान ने ज्ञानोपदेश नहीं किया है। कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं, चलो बैठो और मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करता हूं। लेकिन दूसरे अध्याय जैसे शरणापन्न हुआ, उन्होंने कहा कि मैं शादी माम, मुझे उपदेश करो, है ना, शादी माम मुझे उपदेश करो, त्वाम प्रपन्नम आपके चरणों में मैं समर्पित हूं। और बात भी सही है, दो मित्रों के बीच में ज्ञान का संवाद समर्पण संभव ही नहीं है। दो मित्रों में कितना भी प्रेम हो सकता है, मित्रता का गहरा संबंध हो सकता है, लेकिन समर्पण संभव नहीं है। दो मित्रों के बीच समर्पण का संबंध संभव ही नहीं है, और समर्पण के संबंध के बिना स्वीकृति संभव नहीं है। जहां भी समर्पण होता है वहां स्वीकृति होती है, वहां पूर्ण स्वीकृति, और स्वीकृति के बिना ज्ञान संभव नहीं है। एक मित्र दूसरे मित्र को कितनी भी अच्छी सलाह दे सकता है, लेकिन वो माने नहीं माने उस पर निर्भर है। वो आपकी बात काट भी देगा, वो बोल भी देगा कि तुम नहीं जानते हो, ये भी सोचेगा कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। एक मित्र हमेशा दूसरे मित्र को कहता है कि हम क्या कम जानते हैं, समानता का संबंध है। और मित्रता का अर्थ यही है जो समान है, इसलिए संस्कृत में मित्र को सखा बोलते हैं, सखा, सखा, समाने समान, और खा माने ख्याति, प्रतीति, समान दोनों की, उसको बोलते मित्र। वहां समर्पण का संबंध नहीं है, इसलिए समर्पण में स्वीकृति है, यहां स्वीकृति दे रहे हैं। नचिकेता एक गुरु की स्वीकृति, ये अपने भीतर के समर्पण की स्वीकृति, एतद् अनुशिष्टस्त्वयाहम्। ये अनुशिष्ट शब्द जो है ये शिष्य के अर्थ में है, ये स्वीकृति के अर्थ में, ये समर्पण के अर्थ में है। इसलिए उन्होंने कहा कि अनुशिष्टस्त्वयाहम्, आपके द्वारा मैं शिष्यत्व को स्वीकृत होता हुआ, आपके द्वारा शिक्षित होता हुआ, मैं उस तत्व को जान जाऊं, आत्म तत्व को, जिसके बारे में शास्त्र कहता है और कुछ लोग कहते नहीं है, यही मेरे तीसरा वर आपसे चाहता हूं। वरानाम ईशा वरस्तृतीय। बड़ी सुंदर बात, शेष बात कल करेंगे। आप सीधे बैठ जाएंगे और हम लोग एक माला जप करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय 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 शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।